नमस्कार भारत, आज है 20 फरवरी दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। नागालैंड में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत हुई तेज, मुख्यमंत्री ज़ेलियांग ने छोड़ी कुर्सी, आज नए नेता का चुनाव। यूपी में तीसरे चरण में 62% मतदान, कांग्रेस सपा गठबंधन को सेकुलर वोट के बल पर जीत का भरोसा।
सेक्युलर फोर्सेस का मतलब है मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज जो भी कोई हैं, तो ये एक फायदा बहुत अच्छा होगा हमारे गठबंधन का एंड होपफुली वी शुड विन।
2005 दिल्ली धमाकों की हमारी विशेष सीरीज में आज सुनिएगा उस डीटीसी ड्राइवर की कहानी जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी।
और बैग को उठाकर एक पिछले गेट से उतरकर एक पेड़ था, पेड़ के पास रख के जैसे ही मैं 2 या 3 कदम चला तभी बम ब्लास्ट हो गया।
होगी पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के विरोध से शुरू हुए राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री टीआर ज़ेलियांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल पीबी आचार्य ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई व्यवस्था होने तक उन्हें पद पर रहने को कहा है। स्थानीय नगा जनजाति समूहों को लेकर गठित समिति स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का लगातार विरोध कर रही थी। आंदोलनकारी मुख्यमंत्री ज़ेलियांग के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इराक के सैनिक बलों ने मोसुल शहर के कोई पश्चिम हिस्से को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से वापस लेने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में इराकी सैनिकों ने मोसुल के कुछ गांव में प्रवेश कर लिया है। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक इराकी सेना ने जिहादियों के हथियार, विस्फोटक और धमाके के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक गाड़ी बरामद कर ली है। इराकी सेना के इस बड़े अभियान में हजारों सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टरों को भी उतारा गया है। आईएस के लड़ाके जवाब में कार बम और विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन भेज रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और सहायता एजेंसियों ने शहर में फंसे हजारों लोगों को लेकर चिंता जताई है। सहायता संस्था ऑक्सफैम के टॉम रॉबिन्सन ने इस बारे में ये कहा। बहुत स्थिति खराब हो चुकी है जिससे लोग भाग रहे हैं। उन्हें मोसुल से इराकी सेना के नियंत्रण वाले इलाके में आना पड़ रहा है। इन लोगों के पास अक्सर कुछ नहीं होता है। ये लोग आईएस और इराकी सेना के बीच गोलीबारी के बीच ही निकल कर आ जाते हैं और ये स्थिति काफी खतरनाक है। ये थे टॉम रॉबिन्सन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आज से पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष विराम लागू होना है। इसके तहत लड़ाई के मोर्चे से भारी हथियार हटाना भी तय हुआ है, लेकिन इसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी। यूक्रेन, रूस, जर्मनी और फ्रांस के बीच बातचीत के बाद इस समझौते पर सहमति बन पाई थी। व्हाइट हाउस को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वीडन पर दिए गए एक बयान पर स्वीडन को सफाई देनी पड़ी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली में ये कहा था, जिस पर बवाल मचा है। आप देखिए जर्मनी में क्या हो रहा है, स्वीडन में कल रात क्या हुआ। स्वीडन ने बहुत लोगों को शरण दी, अब उनके सामने ऐसी परेशानी है जो पहले कभी नहीं थी। ब्रसल्स में देखिए क्या हो रहा है, दुनिया को ही देख लीजिए, पेरिस और नीस को ही लीजिए। हमने हजारों लोगों को अपने देश में आने दिया है, कोई छानबीन नहीं हुई, कोई कागजात नहीं लिए गए, लेकिन हम अपने देश को अब सुरक्षित बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर स्वीडन ने अमरीका से जवाब मांगा था कि ट्रंप किस घटना का जिक्र कर रहे थे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा की रैली में अपने समर्थकों को संबोधित करते वक्त किसी एक खास घटना का जिक्र नहीं कर रहे थे। वहीं ट्रंप ने खुद ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने स्वीडन में बढ़ते अपराध पर फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के आधार पर बयान दिया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोलंबिया के राष्ट्रपति युआन मानुएल सेंटोस ने राजधानी बोगोटा में सांडों की लड़ाई के एक कार्यक्रम में हुए हमले की आलोचना की है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 30 लोग घायल हो गए थे, इनमें ज्यादातर पुलिस कर्मी थे। बोगोटा के मेयर एनरिके पेनोसा ने कहा कि ये एक चरमपंथी हमला था और सुरक्षा अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। मेयर के प्रतिबंध के कारण 4 साल बाद बोगोटा में सांडों की लड़ाई का आयोजन किया जा रहा है। मेयर पेनोसा ने कहा कि अधिकारी इसे लेकर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के लिए तैयार थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के बाद अब नागालैंड में भी राजनीतिक संकट के हालात पैदा हो गए हैं। कल राज्य के मुख्यमंत्री टीआर ज़ेलियांग ने इस्तीफा दे दिया। नागालैंड में स्थानीय निकाय में महिलाओं को दिए आरक्षण को वापस लिए जाने के लिए 2 हफ्ते से आंदोलन चल रहा है। आज सत्ताधारी नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायकों की बैठक होने वाली है, जिसमें नया नेता चुना जाएगा। सुनिए दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
राजभवन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राज्यपाल पीबी आचार्य ने ज़ेलियांग का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अगली व्यवस्था होने तक उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले ज़ेलियांग ने अपनी पार्टी नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायकों को एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले से अवगत कराया था। ज़ेलियांग ने पत्र में विधायकों से आम सहमति के साथ एक सचेत नेता चुनने को भी कहा जो उनकी जगह लेगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने आज सुबह 10 बजे एनपीएफ विधायक दल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक के ठीक बाद 11 बजे डेमोक्रेटिक अलायंस नागालैंड के सदस्यों की बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। पहले नए मुख्यमंत्री के लिए नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष सुर होजेली लिजीत्सु का नाम सबसे आगे था, लेकिन अब राज्य के एकमात्र लोकसभा सांसद नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जाने से पहले रियो लगातार 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि नेफ्यू रियो को 8 निर्दलीय सहित 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। दरअसल नागालैंड के स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। इसी का विरोध करते हुए 31 जनवरी को नगा जनजाति समूह ने डिमापुर में एक रैली निकाली थी। इस रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इन 2 युवकों की मौत से गुस्साए आंदोलनकारियों ने बाद में राजधानी कोहिमा स्थित मुख्यमंत्री आवास को घेर लिया था और कई सरकारी भवनों में आग लगा दी थी। कई नगा जनजाति समूहों को लेकर गठित नागालैंड ट्राइब्स एक्शन कमेटी मुख्यमंत्री ज़ेलियांग के इस्तीफा देने की मांग पर अड़े हुए थे। हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की जा रही थी। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री ज़ेलियांग पर इस्तीफा देने का दबाव बनाते हुए पिछले सोमवार से राज्य में बेबुनियादी बंद का ऐलान कर दिया था। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार के सामने अपनी 7 सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिनमें आरक्षण बहाल करने, बीते साल हुए आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने, उन पर दर्ज केस वापस लेने और आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देने की मांगें प्रमुख हैं। समिति ने कल हरियाणा के प्रमुख जिलों में बलिदान दिवस मनाया। संघर्ष समिति के नुमाइंदे आज सरकार के साथ बातचीत करने वाले हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की जाट संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक से और सबसे पहले पूछा कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है।
पिछले साल जब ये आंदोलन हिंसक हो गया था, उस दौरान जो समझौते हुए थे 22 फरवरी को और उसके बाद फिर 18 मार्च को सरकार के साथ समझौते हुए प्रदर्शन करने के बाद, जून में भी ऐसा ही आंदोलन चला था 20 जिलों में, उसके बाद 18 जून को जो समझौते हुए, उन सब समझौतों को सरकार ने ठीक से लागू नहीं किया और उसको टालती रही। अभी भी हमारी यही मांग है कि जो पिछले समझौते हुए उन समझौतों को सरकार पूरा करे। एक सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, उससे हमारी मुलाकात होगी पानीपत में और जो हमारी मांगे हैं, जो कितना मांगे, कब पूरा होगी, कैसी होगी, उन पे चर्चा होगी।
सरकार में किसी मंत्री से, किसी नेता से, मुख्यमंत्री से कहीं किसी स्तर पर बात हो रही है?
पहले भी बात जून में हुआ तो मंत्री से ही बात हो, लेकिन इस बार सरकार ने एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, हम भी उस पर एग्री है कि पहले जो पेपर वर्क है, केस कैसे वापस होंगे, लोग जेलों से कैसे बाहर आएंगे, वो कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट के जो सीनियर अफसर्स हैं उनके एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी वही होती है, तो इसलिए उनसे बात रखी गई है।
सरकार का रुख जो है अभी तक आपके आंदोलन को लेकर, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं?
सरकार का रुख अभी तक टालने वाला रहा है, क्योंकि पिछली बार भी इन्हीं 7 मांगों पे 3 बार फैसले हो चुके, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया है कि पहले हम फैसले होने के बाद आंदोलन को विड्रा कर लेते थे, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि जब तक वो फैसले लागू नहीं हो जाएंगे तब तक हम आंदोलन चलाते रहेंगे, सरकार से बात भी करते रहेंगे।
तो ये आपने क्या डेडलाइन तय की है इसके लिए?
जो फैसले हमने लिए हैं, 26 फरवरी को काला दिवस मनाया जाएगा, 1 मार्च से फाइनेंशियल सहयोग का कार्यक्रम शुरू होंगे, 2 मार्च को हमारा दिल्ली में धरना होगा और दिल्ली के धरने से हम संसद के घेराव का ऐलान करेंगे किस दिन संसद का घेराव करना है। ये तमाम चीजें आज हमने धरने बढ़ाना 1 मार्च से है, ये तमाम चीजों की भी आज हमने अपनी रणनीति की घोषणा की है।
ये थे जाट संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सियासी गहमा गहमी जोरों पर है। कल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 69 सीटों के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान 62% के करीब रहा। 4 चरण का चुनाव अभी बाकी है और सभी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने के बाद कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा रही शीला दीक्षित ने मैदान से थोड़ी दूरी बना ली है, लेकिन सेक्युलर वोटों की बदौलत गठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनसे बात की वात्सल्य राय ने।
जितनी सेक्युलर फोर्सेस हैं इस वक्त वो इस गठबंधन में, इस अलायंस के पीछे चल गई हैं। सेक्युलर फोर्सेस का मतलब है मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज जो भी कोई हैं, तो ये एक फायदा बहुत अच्छा होगा हमारे गठबंधन का एंड होपफुली वी शुड विन। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उनका कोई चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नहीं है।
लेकिन प्रधानमंत्री की रैली जो हुई, उनका कहना था कि उन्होंने अखिलेश यादव को सुबह देखा, उनका चेहरा लटका हुआ था, यानी गठबंधन पर एक तरह से चोट थी।
मैं समझती हूँ, माफ करिएगा, बात साफ कह रही हूँ मैं, कि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है।
लेकिन शीला जी, लेकिन निजी हमले आप लोगों की तरफ से भी काफी हुए हैं, बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब उन्होंने प्रचार शुरू किया रायबरेली में, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री ने जो गोद लेने वाली बात की थी उसको लेकर तीखा हमला किया।
नहीं तो तीखा हमला तो इसलिए कहा ना कि वो है तो नहीं ना यूपी के, अब वो कल चले जाएंगे कह देंगे मैं तमिलनाडु का हूँ, कल परसों चले, वो तो सारे देश के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ऐसी बात कहना जो लोगों को गुमराह कर दे के, अच्छा लोगों के प्रश्न ये भी आते हैं कि भैया अगर जो आप यहाँ पर आ गए हैं तो आप क्या मुख्यमंत्री यहाँ के बनेंगे? जैसे मैंने कहा, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है कि वो कौन लीड करेगा।
इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में आपकी कोई भूमिका होगी कांग्रेस पार्टी?
ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, मैं इसमें फैसला नहीं कर सकती हूँ। मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हूँ, आप जानते हैं, तो क्या पार्टी कहेगी? मैं तो उनमें से हूँ जो दिल्ली आई थी तब भी पार्टी की आदेश से आई थी, यूपी गई तब भी आदेश से, तो जो भी पार्टी कहेगी सो ठीक है।
ये थी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित। जब यूपी में चुनाव चल रहे हों तो छात्र राजनीति का गढ़ मानी जाने वाली बीएचयू इससे अछूती कैसे रह सकती है? वैसे विश्वविद्यालय में कई साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन वहां पढ़ने वाले छात्र विधानसभा चुनाव पर बारीक नजर रख रहे हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ऐसे ही कुछ छात्र छात्राओं से बीएचयू में एक कॉफी शॉप पर मिले।
हम लोग ये मधुबन कैफे में है तो कॉफी का माहौल है और कॉफी पे हम लोग बातचीत करेंगे। गर्मा गर्म कॉफी देखिए बन रही है। क्या नाम है आपका?
नारायण दत्ता।
नारायण दत्ता, कब से हैं यहाँ पर?
यहाँ 27 साल हो गए।
27 साल से हैं और आप कॉफी बना रहे हैं, बड़ी बेहतरीन झाग वाली कॉफी बनाई है आपने। वोट देने जाते हैं? हर बार देते हैं,
हर बार।
कुछ बदला है वोट देने से?
अब हमको समझ में जिसको आएगा उसको दे देंगे,
जिसको समझ में आएगा उसको वोट दे देंगे। महिला प्रत्याशियाँ कठपुतली के तौर पर क्यों रह जाती है, ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती
है। मोस्टली ये होता है कि महिलाओं को एक तो पॉलिटिक्स से उन लोग दूर रहना चाहती है, घरेलू चीजों में फंसा के उनको दूर रखा जाता है। दूसरा, उन लोग को ये लगता है कि उन लोग का हस्बैंड जिस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है वोट, उनको भी उसी को देना चाहिए ऐसा, क्योंकि उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता है, तो वो एक कठपुतली की तरह ही काम कर दिया।
हम लोग चूंकि एक बहुत बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी में है, तो जाहिर है लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि उनके आइकन्स कौन है। आप बताइए, इस वक्त भारतीय राजनीति में सबसे कद्दावर नेता कौन है?
मैं तो अगर बात करूं तो भारतीय राजनीति में अगर आप देखिए तो गद्दावर कोई इस तरीके का नेता नहीं है कि आप जिसे कह सके कि वो मेरा आइकॉन है।
राजनीति शास्त्र के छात्र को भारतीय राजनीति में एक भी कद्दावर नेता नहीं दिखा?
नहीं, आप नेता के जो अपने उसूल होते हैं, मैं आपको बात करूं कि अगर आप एक बार जो है उसूलों की राजनीति करने वाला हमारे देश में लोहिया जैसा, ये चौधरी चरण सिंह जैसा नेता नहीं बचा हुआ है।
इस यूनिवर्सिटी में एक अजीब किस्म का नियम है कि जब छात्र या छात्राएं दाखिला लेते हैं तो छात्राओं से एक एफिडेविट साइन कराया था, क्या होता है उस एफिडेविट में बताइए।
एफिडेविट में आपको ये लिखना होता है कि आप किसी भी टाइप के प्रोटेस्ट में या धरना या हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर हमारे प्रोटेस्ट करने की एक आज़ादी है, वही हमारे एंट्री के साथ यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है। एक स्टूडेंट का अधिकार, एक हर इंसान का अधिकार होता है कि वो अपनी जो चीज़ें गलत लग रही हैं वो कम से कम बोल पाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन, एमएमबी एडमिनिस्ट्रेशन या बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन वही खत्म कर देता है, हमसे हमारे बेसिक राइट्स खत्म।
बेसिक राइट्स, आपने भी एफिडेविट साइन किया था?
हाँ जी, वो एक्चुअली एफिडेविट हम साइन नहीं करते, हमारे पेरेंट्स स्पेशली बुलाया जाता है साइन करने के लिए। तो हर साल जब भी हॉस्टल अलॉटमेंट होता है तो उसमें ये होता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपकी हॉस्टल अलॉटमेंट की जो भी सीट्स हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत पर्टिकुलर इसलिए लगती है क्योंकि जितनी भी बॉडीज़ हैं बीएचयू में वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं। अब अगर स्टूडेंट के कोई इशू है तो वो कैसे बोले, क्योंकि वो नहीं बोल सकता।
केरल में एक मशहूर अभिनेत्री के साथ कथित तौर पर यौन शोषण के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना शुक्रवार की है और इसे लेकर मलयालम फिल्म बिरादरी से जुड़े लोग बेहद गुस्से में हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम अखबारों के साथ हरिता मौजूद हैं। हरिता, अखबारों ने इस खबर को कैसी कवरेज दी है?
मैं देख रही हूँ ये खबर कल भी आई थी और नवभारत टाइम्स ने इस पर लिखा है कि मलयालम फिल्मों की जो अभिनेत्री है उन्हें अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया गया है और पुलिस ने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अखबार ये भी लिखता है कि एक्ट्रेस के सपोर्ट में जो है फिल्म जगत के तमाम लोग सामने आ गए हैं और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। और हालांकि बीबीसी ने जो कल रात हमारे पन्ने पर खबर आई और हमें बीबीसी के इमरान कुरैशी ने जो खबर दी है कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ये कल रात का डेवलपमेंट है।
जी।
इसके अलावा कल प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में बयान रमज़ान और दिवाली को लेकर जो आया था उसे लेकर काफ़ी अखबारों में चर्चा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रमज़ान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी मिले, और इसी पर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक कार्टून प्रकाशित किया है जिसमें एक बेहद गरीब परिवार है, अंधेरे में महिला खाना पका रही है, एक बच्ची भी खड़ी है और पुरुष जो है उसके हाथ में लालटेन है, लेकिन यहाँ लिखा है कि इसमें बिजली नहीं देने में जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिया जाता और कई घरों में अंधेरा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और खबर सारे अखबारों में छाई है, शौचालय नहीं तो निकाह भी नहीं। ये जो फरमान है ये मौलवियों ने दिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में उन्होंने तय किया है कि जो है जिन घरों में शौचालय नहीं होंगे वहाँ उन घरों के लड़कों के साथ निकाह नहीं कराया जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव ने ये जानकारी दी है कि 3 राज्यों में ये शर्त जो है अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा जेट के विमान जो है वो जो अपना रूट भूल गए थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इस पर भी एक खबर जो है मैं सारे ही अखबारों में देख रही हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मुंबई से लंदन जा रहा था ये विमान जेट एयरवेज का था और जब संपर्क टूट गया तो जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने इसे इंटरसेप्ट किया और उसे जो है इसकी जाँच की जाएगी। जेट एयरवेज ने कहा है कि ऐसा क्या हुआ था इसकी जाँच की जाएगी।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए हरिता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है, आगे बढ़ते हैं। कल से आप सुन रहे हैं 2005 के दिल्ली धमाकों पर आधारित हमारी खास पेशकश। इन धमाकों में 67 लोगों की जान चली गई थी। जिन लोगों को दिल्ली धमाकों की धुंधली सी भी याद होगी उन्हें डीटीसी के उस बस ड्राइवर कुलदीप सिंह की कहानी जरूर याद होगी जिन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देकर कई लोगों की जान बचाई थी। कुलदीप सिंह ने उस दिन कई घरों को तबाह होने से तो बचा लिया लेकिन खुद अपनी आंखें गंवा बैठे। 12 साल बाद पिछले दिनों जब निचली अदालत का फैसला आया तो कुलदीप सिंह भी अन्य पीड़ितों की तरह निराश हुए क्योंकि 2 अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया था। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद के साथ कुलदीप सिंह ने उस खौफनाक घड़ी को इस तरह याद किया।
उस दिन कालकाजी डिपो के आगे से जैसे ही हम बस लेकर निकले तो पीछे से आवाज आई कि गाड़ी में बम है। तो मैंने बोला कि 1 मिनट रुको, थोड़ा आगे चल के खाली एरिया है, वहाँ रोक कर मैंने सारी सवारी को उतारा। उस समय गाड़ी के अंदर 70 से 80 पैसेंजर थे। फिर मैं गाड़ी में पीछे आया तो ड्राइवर सीट से 4थी या 5वीं सीट के नीचे एक बैग रखा हुआ था। उस बैग को उठाकर मैंने सीट पे रख के उसको खोल के देखा तो उसमें एक छोटा सा अलार्म था। उसमें सुई नहीं थी कोई और 3 तार लगे हुए थे, लाल पीला हरा। उसमें से टिक टिक की आवाज़ आ रही थी और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं भाई ये तार हटा दो तो बम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर सोचा कुलदीप अगर गलती से कोई गलत तार हट गया तो जाएगा लेकिन पब्लिक कितनी जाएगी, क्योंकि गाड़ी भी CNG की थी, उसमें भी 8 सिलेंडर लगे हुए थे। तभी मैंने उसको बंद किया बैग को और बैग को उठाकर एक पिछले गेट से उतरकर एक पेड़ था पेड़ के पास रख के जैसे ही मैं 2 या 3 कदम चला तभी बम ब्लास्ट हो गया। उसमें मेरे हाथ खराब हो गया, एक कान, दोनों आँखें खराब हो गई, इधर का राइट का हिस्सा ये सारा ही जल गया था, राइट साइड।
अच्छा, उसके बाद आप बेहोश हो गए?
हाँ जी।
फिर होश आया तो क्या, कहाँ पर आया?
उसी दिन रात को 10 बजे के करीब डॉक्टर ने सुई वगैरह कोई लगाई तो उससे मेरे को होश आया, तो मैंने बोला कि मेरी मिसिज 8 महीने की प्रेग्नेंट है और घबराने की कोई बात नहीं, कुलदीप के हाथ में जरा सी चोट आई है, और फिर मैं उसके बाद बेहोश हो गया सर। तो उसके बाद तो सर 7-8 दिन के बाद होश आया था, तो आईसीयू रूम में था मैं। ये तो सर जब होश आया था उसके बाद ही पता चल गया था भाई आँखों की रोशनी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
डॉक्टर ने क्या कहा?
डॉक्टर तो आसमान, वहाँ पे तो ऑल इंडिया मेडिकल के तो भाई डॉक्टर बोलते थे कि भाई रोशनी आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाई सर।
तो इलाज के लिए आपको और कहाँ कहाँ जाना पड़ा?
इलाज के लिए मैं डॉक्टर वहाँ पे हैदराबाद में भी गया हूँ सर, वहाँ पे भी इलाज कराया, वहाँ पे हल्की रोशनी आ गई थी राइट वाली आँख में, लेकिन इन्फेक्शन होने के कारण वो भी रोशनी चली गई सर।
और आपका बेटा कितना बड़ा है अभी?
बेटा सर वो 11 साल का हो गया है सर, 12वीं साल में लग गया। एक बेटा है सर, वो भी हादसे के 1.5 महीने बाद पैदा हुआ था, उसका भी अभी तक मैं चेहरा नहीं देख पाया सर।
उसका अफसोस होगा आपको?
उसका भाई अफसोस भी है कि भाई हमने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, लेकिन हमें अपने ऊपर गर्व भी है कि भाई हमने 70 से 80 पैसेंजरों की जान बचाई।
उसको कैसा लगता है जब ये, उसको सारी किस्से मालूम है?
हाँ जी, उस तो शुरू शुरू में तो वो जब 3-4 साल तक तो वो आते थे मीडिया वाले, तो उनसे क्या गया, हम जब अपनी स्टोरी बताते तो वो सुनता था, वो कहता था बेटा पापा आपने देखो भाई इतनी बहादुरी का काम किया, इतने लोगों की जान बचाई, और हमारे लिए तो सर अंधेरी होगी जिंदगी, दूसरे का क्या आस्तिक हो गए, दूसरे के सहारे रहना पड़ता है, और टूट ही जाते हैं तो सुबह मिसिज छोड़ के आती है जी, शाम को लेके आती है, हम तो अब मिसिज के ही सहारे हैं सर।
DTC के ड्राइवर कुलदीप सिंह से बात कर रहे थे जुबैर अहमद। और अब सुनिए पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी।
पिछले एक हफ्ते से आप पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों की खौफनाक नई लहर के बारे में ही सुन रहे होंगे, मगर एक अच्छी खबर इस लहर के बीच कहीं दब के रह गई, यानी पाकिस्तान बनने के 70 वर्ष बाद यहाँ पर बसने वाले हिंदुओं को आखिर हिंदू मैरिज एक्ट मिल ही गया। पिछले वर्ष सितंबर में नेशनल असेंबली ने इस कानून की मंजूरी दी थी, और 2 दिन पहले राज्यसभा यानी सेनेट ने भी इस बिल को बिना किसी मुखालिफत के मंजूर कर लिया। अब राष्ट्रपति इस पे दस्तखत करेंगे और पाकिस्तान की हिंदू बरादरी की कम से कम एक मुसीबत ज़रूर कम हो जाएगी। कभी आपने सोचा कि आप भले शादीशुदा हों मगर कोई सरकारी दफ्तर, अदालत, पुलिस और वो समाज जिसके बीच आप रहते हों उसे दिखाने के लिए आपके पास अपनी शादी का कोई कागजी सबूत ना हो और आपका ताल्लुक भी किसी अल्प मत से हो तो जीवन कैसे गुजरता होगा? शादी की कोई कानूनी दस्तावेज ना होने की सूरत में आपका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट कैसे कैसे सबूतों के जोखिम से गुजर के बनता होगा? किसी महिला का बैंक अकाउंट कैसे खुलता होगा? और जायदाद के बंटवारे में शादीशुदा औरत का हिस्सा रिश्तेदारों और सरकार समेत कौन कौन तस्लीम करता होगा, इत्यादि इत्यादि। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी माइनॉरिटी की महिला हैं और कोई आपका अपहरण करके ज़बरदस्ती आपका धर्म बदलवा के आपसे शादी कर ले तो अदालत में आप कैसे साबित करेंगी कि आप तो पहले से शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं? हिंदू मैरिज एक्ट बनाने की पहली योजना 70 के दशक में भुट्टो हुकूमत ने की थी, मगर हर बार तान यहाँ आके टूट जाती कि राजपूत बनिए और जाट वर्ग के हिंदू खड़े हो जाते कि हमारे यहाँ तो तलाक होती ही नहीं, जबकि पिछड़ी जातियाँ अगरचे बहुमत में थीं मगर उनकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत कम थी, इसलिए उनकी कोई नहीं सुनता था कि भैया हमारे यहाँ तलाक को लेकर कोई आपत्ति नहीं, कम अज़ कम मैरिज एक्ट तो बना दो। अब कहीं जाके कौमी असम्बली के एक मेम्बर रमेश कुमार वेंकवानी की कोशिशों से 3 वर्ष बाद एक ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट मंजूर हो गया है जिसमें दूल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, शादी परत पर पंडित जी के हस्ताक्षेप होंगे और फिर शादी परत सरकारी दफ्तर में भी रजिस्टर होगा, और तलाक समेत किसी भी मसले की सूरत में शादी परत की वही कानूनी हैसियत होगी जो मुसलमानों के यहाँ निकाह नामे की होती है। पति की मौत के 6 महीने बाद विधवा चाहे तो दोबारा अपना घर भी बसा सकेगी और उसके इस फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। इससे पहले कि आप तक कोई बुरी खबर पहुंचे, मैंने सोचा कि अच्छी खबर की भी बात हो जाए, कल हो ना हो।
ये थी वसतुल्लाह खान की डायरी और अब हमारी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी सप्ताह गुरुवार से पुणे में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेट टीम जीत के रथ पर सवार है, खासकर अपने ही घरेलू मैदानों पर, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम बदलाव के दौर का सामना कर रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी ही जमीन पर खेलते हुए पिछली टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से मात दी थी। पहले टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ मुंबई में 3 दिवसीय अभ्यास मैच में हाथ खोलने का अवसर मिला, जो बिना किसी नतीजे के कल समाप्त हो गया। लेकिन अभ्यास मैच समाप्त होते होते ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को खुशखबरी मिली कि वो आईपीएल के 10वें सीजन में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स की कप्तानी संभालेंगे, वो भी आईपीएल के सबसे कामयाब कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी की जगह। ये नई जिम्मेदारी भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में उनके हौसले बढ़ा सकती है, ऐसा मानते हैं क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन।
बेशक देखिए, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में गिना जाता है, लेकिन उसकी जो प्रोफाइल है आईपीएल की क्रिकेट की जगत में बहुत ऊंची है, और कैप्टन बनना एक, और वो भी खास करके महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर को रिप्लेस करना एक बहुत बड़ी बात है। और स्टीव स्मिथ, मुझे तो लग रहा है कि उनका हौसला जो है टेस्ट सीरीज के लिए भी बढ़ जाएगा, भारत के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज अगले हफ्ते शुरू हो रही है। लेकिन राइजिंग सुपर जायंट्स पुणे की टीम में किस तरह का इम्पैक्ट होता है इस कैप्टेंसी चेंज से, ये अब देखना पड़ेगा।
तो आईपीएल से कप्तानी गई महेंद्र सिंह धोनी की, दूसरी तरफ आज ही सबकी नजरें रहेंगी आईपीएल 10 के नए सीजन के लिए बेंगलोर में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी पर। इसमें 122 विदेशी खिलाड़ियों सहित 351 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जिनमें से 76 खिलाड़ी चुने जाएंगे। इंग्लैंड के बेन स्टॉक्स और इयान मॉर्गन, दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर और तेज गेंदबाज काइल हैबिट, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन और भारत के इरफान पठान पर फ्रेंचाइजी अपना दांव लगा सकती हैं। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका में आयोजित किए जा रहे आईसीसी महिला विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले में कल पाकिस्तानी महिला टीम को बेहद आसानी से 7 विकेट से मात दी। दरअसल पाकिस्तानी महिला खिलाड़ी भारत की खब्बू लेग स्पिनर एकता बिष्ट की घूमती गेंदों को समझ ही नहीं सकी और उनकी पूरी टीम 43.4 ओवर में 67 रनों पर ढेर हो गई। एकता बिष्ट ने 10 ओवर में केवल 8 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके बाद जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य भारत ने दीप्ति शर्मा के नाबाद 29 और हरमनप्रीत कौर के 24 रनों की मदद से 22.3 ओवर में ही केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली। और अब बात मुक्केबाजी की। जब हौसले बुलंद हो तो फिर उम्र का क्या देखना, कुछ ऐसा ही अब देखने को मिलेगा जब 35 साल के अखिल कुमार और 28 साल के जितेंद्र 1 अप्रैल को अपने मुक्कों का दम पेशेवर मुक्केबाजी में दिखाएंगे। उसी दिन भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह चीन के सुपर मिडिलवेट चैंपियन मेहमत याली से 2-2 हाथ करेंगे। अखिल अपने मुकाबलों को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
बिल्कुल, हम दोनों ही क्या, हम तीनों ही मुक्केबाज 2008 के बाद एक साथ उतरेंगे, विजेंद्र, अखिल और जितेंद्र। हम तीनों एक साथ बीजिंग ओलंपिक के बाद फिर से एक स्टेज पे एक जगह दिखाई देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बॉक्सिंग को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जिस तरीके से हमने अमेचर बॉक्सिंग के लिए अच्छा किया और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए भी अच्छा करें ताकि बॉक्सिंग और बॉक्सर्स का फायदा हो सके।
अखिल साल 2006 में मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और जितेंद्र।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलिंग ने इस्तीफा दिया। नया नेता चुनने के लिए विधायक दल की बैठक आज। इराक के सैनिक बलों ने मोसुल शहर के पश्चिमी हिस्से को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से वापस लेने के लिए कुछ गांवों में प्रवेश कर लिया है। आज से पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष विराम लागू होना है। व्हाइट हाउस को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वीडन पर दिए गए एक बयान पर स्वीडन को सफाई देनी पड़ी है। इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ ये सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।